ओम शाम। सभी ने मास्क पहना है ना, और मास्क नाक और मुंह दोनों को ढक के रखना है, और थोड़ा डिस्टेंस रखो दो के बीच में। इस विद्यालय में सभी स्टूडेंट का एक ही लक्ष्य है, बाप समान बनना कहो, कर्मातीत कहो, या लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। तो बाबा ने हमें पहले तो शूद्र से ब्राह्मण बनाया, अभी ब्राह्मण से यहां फरिश्ता बनना है, और सत्युग में देवता। तो इस लक्ष्य को हमें भूलना नहीं है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं और हमें क्या करना है। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी आपने कितनों ने पढ़ी है, जरा हाथ उठाना। 50%। तो जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप मोस्टली हिंदी बैकग्राउंड से हैं, तो यहाँ भी लिटरेचर में मिलती होंगी और आपके सेंटर पर भी मिलती होंगी। तो ये जरूर पढ़ें, क्योंकि आपने देखा नहीं है, जितना पढ़ेंगे सुनेंगे उतना समान बनने में मदद मिलेंगे। हमारा तो सौभाग्य था जो मम्मा बाबा भाव विश्व किशोर सबको मिलने का भाग्य मिला, और ब्रह्मा बाबा एक अलौकिक व्यक्ति थे जो सबको बाप की भाषणा देते थे, खुद यही समझते थे मैं प्रजा का पिता हूँ, सबका बाप हूँ। तो चाहे मिनिस्टर उसके सामने आते थे, चाहे लेबरर, चाहे पशु पक्षी, सबको बच्चे बच्चे कहते थे। और उतना ही प्यार देते थे और साथ साथ संभाल करते थे। जब लेबरर को देखते थे कि ठंडी में उनके पास इतने गर्म कपड़े नहीं हैं, तो अपने साथ में उनकी ब्राह्मणी लच्छू दादी होती थी, तो उसको कहते थे, बच्ची इस बच्चे को गर्म स्वेटर दो। और उनका नियम था 10 बजे के बाद अपनी पोस्ट पूरी करके झोपड़ी में बैठकर पर्सनल मुलाकात करते थे। तो 3 दिनों में रोज चिड़िया उस समय आती थी, तो ब्रह्मा बाबा कहते थे, लच्छू बच्ची इस बच्ची को टोले दो, यानी वो चिड़िया भी बच्ची है। और रोज टोली देते थे तो नेचुरली वो चिड़िया भी रोज आती थी और टोली खा के जाती थी। तो उनका स्नेह ऐसा था, निष्पक्ष निस्वार्थ बेहद का, और सब समझते थे बाबा मुझे जितना प्यार करते हैं शायद किसी को नहीं करते होंगे। तो बाबा के जीवन में बैलेंस था, स्नेही भी थे तो नष्ट मोहा भी थे। जब भाव ऑपरेशन के लिए गए थे, आए थे मुंबई में, तो तीसरे चौथे दिन मामा ने रात को जाकर करंट दिया प्रकाश की, और जब उन्होंने दे छोड़ा तो मुंबई से दादी ने फोन किया, भाऊ ने शरीर छोड़ा। तो बाबा स्नान करते थे, एक सेकंड भी नहीं रुका, स्नान करते करते समाचार सुन लिया। फिर दादी ने पूछा उसके रथ को यहाँ ले आए मधुबन का, अभी शरीर छोड़ दिया, अभी शरीर को यहाँ लाने की क्या दरकार। तो इतना नष्ट मोह थे, और फिर रोज भोग लगता था मुंबई में, और दादी संदेश ले आती थी और पत्र में मधुबन भेजती थी। तो मनोहर दादी यहाँ थी, तब दादी ने बाबा को प्रश्न पूछा, ये बहुत अच्छे अच्छे संदेश आते हैं क्लास में सुनाओ। कहा नहीं, नहीं तो लोग हैं भाव को याद करेंगे, बाबा को नहीं याद करेंगे। और आपको मालूम है कि बाबा को फोटो लेना पसंद नहीं था, तो उनके अंतिम क्रिया का, भाव की अंतिम क्रिया के फोटो भी ले आए थे बम्बई से, पर बाबा को दिखाने की तो हिम्मत ना चली। तो शील दादी ने क्या किया कि जब सवेरे बाबा चक्कर लगाते थे, एक तरफ शील दादी थी एक तरफ मनोहर दादी थी, तो शील दादी मनोहर दादी को दिखाती थी, बीच में बाबा थे, मनोहर ये फोटो देखे, ताकि बाबा देख सके। बाबा ने पूछा कितना खर्च किया, 90 रुपया वेस्ट ऑफ मनी, मतलब बाबा ना किसी को फोटो चाहते थे ना किसी का फोटो लेने देते थे। आपने हिस्ट्री हॉल में देखा होगा कि बाबा बीच में थे, रमेश भाई और भाव दो तरफ थे। तो रमेश भाई अपने अनुभव में लिखते थे, वैसे तो बाबा कभी फोटो नहीं खिंचवाते थे, पर भाव जब बम्बई जा रहे थे तो बाबा ने खास खिंचवाया। मतलब बाबा को होता था कि हो सकता है वह वापस ना आए, और भाव ने भी जाने के पहले पूरी तैयारी की थी, जो भी उसका कारोबार था सब क्लियर कर दिया और सबको सौंप दिया था। तो ये था बाबा का बैलेंस, न्यारा और प्यारा। दूसरा बैलेंस था, एक तरफ बाबा बहुत नम्र थे, कभी किसी को पांव पड़ने के लिए या माथा झुकाने के लिए नहीं कहते थे, खुद नमस्ते करते थे, और पत्र में भी यही लिखते थे, ओबीडियंट सर्वेंट। अपना ड्रेस बदली नहीं किया, जब स्टेशन पर आते थे, क्योंकि बाबा ने कभी फ्लाइट में मुसाफरी नहीं की, ट्रेन में करते थे। स्टेशन पर आते थे, फूल माला नहीं, मैं देवता नहीं हूँ, मैं अभी ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मणों को फूल माला बुके गुलदस्ते नहीं सौंपते, और गुप्त हूँ, गुप्त रीति से आता हूँ, इसलिए क्राउड को भी स्टेशन पर नहीं आने देते थे। क्लास में ही मिलते थे, आते थे तो क्लास से ही छुट्टी लेते थे। पर नशा रहता था कि मैं अनन्य बच्चा हूँ, कल जाकर मैं मिचनू कृष्ण बनूंगा। लच्छू दादी जब उनको ड्रेस देती थी, कल जाकर मैं ये ड्रेस पहनूंगा कृष्ण का, तो ये नशा रहता था। उनके पास बैलेंस था बालक और मालिक, क्योंकि उस समय बाबा के सामने जगदीश भाई, रमेश भाई, ब्रिजमोहन भाई आदि आदि अनन्य बच्चे थे, जो दुनियावी रीतों में अनुभवी और प्रोफेशनल थे। तो कभी कभी बाबा उनकी राय भी लेते थे, परंतु मालिक बनकर फैसला करते थे, क्योंकि बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय कहा, हम लौकिक गवर्नमेंट में रजिस्टर नहीं करेंगे। रमेश भाई ने राय दी कि चलो हम वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट बनाएं, ताकि हमें टैक्स कंसेशन मिले। तो रमेश भाई की ये राय मानकर ट्रस्ट बाबा ने अपने सामने निर्माण किया। और बाबा के अंदर उदारता और इकोनॉमी का बैलेंस था। बाबा हमेशा मुरली में भी कहते हैं, कम खर्च बाला नशिंग, कोई भी प्रोग्राम करो खर्च कम करो, परंतु आलीशान रूप से करो। और बैगरी पार्ट जब था 50s में, तो हमारे जो दादियां दादा थे वो क्या करते थे कि कंपनी, फैक्ट्री, प्रिंटिंग प्रेस के मालिक के पास जाते थे, और संस्था कितना बड़ा कार्य करती है तो फ्री में या तो कॉस्ट प्राइस में खरीदारी करते थे, क्योंकि 400 लोगों को खिलाना पिलाना, जूते कपड़े सब थे, तो वो बहुत इकोनॉमिकली खरीदते थे। और आबू में तो आप जानते हो, कुछ सब्जी फल कुछ नहीं होता है, सब अब रोड से या गुजरात से लाना पड़ता है। उन दिनों में हम बम्बई दिल्ली से फल ले आते थे, तो बाबा को दिखाते थे, बाबा फल देखते थे, प्राइस पूछते थे कितना खर्च किया, और बाबा को प्राइसेस मालूम होती थी। यदि देखता था कि इसने प्राइस ज़्यादा दी है, क्वालिटी ऐसी नहीं है, कहेगा बुद्ध हो, या कोई सेवा करने जाता था और या घूमने भी जाता था और साथ में पर्चे नहीं ले जाता था तो कहता था अजाम है। सेवा का भी उमंग था और सोचता था जो भी जहां भी जाते हैं पर्स में पर्चा जरूर होना चाहिए जो देते जाए और सेवा करते जाए। तो एक तरफ उदार भी थे, जैसे बताया कोई भी गरीब है गर्म कपड़े नहीं हैं फौरन दे देते थे। मैं भी जब पहली बारी मधुबन में आई बाबा से मिली, पूछा घर में कितने भाती है, हर एक के लिए सौगात दी। और आप देखते हैं यहाँ जो भी आते हैं सौगात समान मिलती है, चाहे कोई ज्यादा यज्ञ में देते हैं चाहे कम देते हैं नहीं देते हैं, सौगात सबको एक समान मिलती है। और हर विंटर में हर लेबरर को एक ब्लैंकेट जरूर मिलता है। तो बाबा ने जो सिस्टम शुरू की अभी तक चालू है। एक तरफ बाबा रॉयल थे, बोलना चलना खाना पीना कपड़े रॉयल सिंपल, सादगी भी थी तो रॉयल्टी भी थी। आज भी जब लोग ब्रह्मा कुमारियों को देखते हैं सफेद कपड़े और इतने साफ है, और दादी जानकी को कभी कभी कोई पूछते थे कि आपके कपड़े इतने सफेद क्यों हैं, तो दादी क्या कहती थी, मैं पेरिस में धुलवाती हूँ। तो एक तरफ बाबा गंभीर थे और दूसरे तरफ रमणीक भी थे। भाई दोनों के बीच में जरा जगह रखो, थोड़ा उस तरफ बैठो। गंभीर थे, गंभीरता से बात करते थे, तो दूसरे तरफ रमणीक भी थे। जब दादी शुरू शुरू में बंबई में आई थी प्रकाशमणि दादी 64 में, इतनी सेवा नहीं थी, तो बाबा ने एक दिन लिफाफे में मरी हुई मक्खी भेजी। तुम बंबई में मक्खी मारती हो ना, और हम लोग यूजुअली विदेश से आते थे फरवरी मार्च रहते थे अप्रैल में जाते थे। तो एक दिन मैं 1 अप्रैल को जा रही थी, टैक्सी में बैठी थी और लच्छू दादी दौड़ती दौड़ती आई कि बाबा ने आपके लिए गरम गरम पकौड़े भेजे। और पकौड़े खोले तो उसमें बीच में रोई थी, या कभी मूंगफली के छिलके रखते थे। तो एक तरफ तो बाबा जिम्मेवार थे, इतनी बड़ी जिम्मेवारी संस्था की, और 400 लोगों की पालना करना। और जब बेगरी पार्ट आया तो भी वो जिम्मेवारी थी, क्योंकि 14 वर्ष तो आराम से खिलाया पिलाया पहनाया रेशमी कपड़े पहनाए, पर जब आबू में आए कई वस्तु छोड़ के आए, कई मकान सस्ते में बेच दिए। तो जब आबू में आए 1950 में, फिर पैगरी पाठ भी शुरू हुआ। तो बाबा को कभी चिंता नहीं हुई। एक दिन 10 बजे इसने भंडारी ने कहा बाबा के बॉक्स में कुछ पैसा नहीं है, गेहूं नहीं है, आटा नहीं है, और रोटी कैसे बताएंगे। बाबा ने कहा वेट करो, पोस्ट आने दो। और पोस्ट में रुपये थे और टाइम पर रोटी का बैल बजा। तो चिंता नहीं हुई बाबा को क्या होगा, अपने को निमित्त समझते थे, कराने वाला वो है, इतने बच्चों के पालना उसको करानी है। सेम दादी को, दादी प्रकाशमणि के, उनके ऊपर तो और भी जिम्मेवारी थी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के सामने तो 125-150 सेंटर थे, दादी के सामने 125 कंट्री में सेंटर थे। परंतु दादी को कभी चिंता में नहीं देखा, हमेशा लाइट हर्षित। और पथारी में लेटती थी, एक मिनट में सो जाती थी, क्योंकि चिंता नहीं थी। तो अपने को निमित्त समझते थे। तो एक तरफ केयरफुल भी थे, संभल संभल के इकोनॉमी से संकल्प समय धन सब संभल संभल के यूज करते थे, व्यर्थ नहीं कमाते थे। तो दूसरी तरफ बेफिकर। तो एक तरफ बाबा बिजी भी थे, इजी भी थे। सवेरे 4 बजे से रात को 10 बजे तक सेवा में व्यस्त रहते थे, 93 की आयु तक, लास्ट तक। और कभी कभी लच्छू दादी देखती थी कि बाबा जरा थके हुए लगते हैं, तो पूछती थी मिलने वालों की क्यों बंद करें। बाबा कहेंगे नहीं, जरा एक फाड़ संतरे की लाओ, वो संतरे के फाड़ चूस कर फ्रेश होके काम चालू रखते थे, अथक सेवा था। और नेचुरली है, खुद इतनी सेवा करते थे तो चाहते थे बच्चे भी अथक सेवा करें। लौकिक को भी अलौकिक बना दिया, क्योंकि परिवार तो साथ में रहता था, जसोदा मैया, निर्मल शांता दादी, द्विजेंद्रा दादी और छोटी, सब साथ में रहते थे। नारायण भी उसी साथ में रहते थे, परंतु सभी ब्राह्मणों के साथ एक समान दृष्टि, ऐसे नहीं कि निर्मल शांता दादी बेटी है या विजेंद्रा दादी बहू है तो उन्होंने उनको यज्ञ माता नहीं बनाया। मम्मा की विशेषता देखकर मम्मा को यज्ञ माता बनाया। और सबको, सब उनको बाबा कहते थे। जसोदा मैया जो युगल थी उसको भी उसको बाबा कहना पड़ा। इजी तो नहीं है ना पति को बाप कहना, परंतु वो किया। और मम्मा को सभी मम्मा कहते थे, ब्रह्मा बाबा कभी बेटी कहते थे, कभी मामा कहते थे। और जसोदा मैया को मम्मा से लक्ष्मी का साक्षात्कार हुआ और सबको मालूम था कि ये जाकर फ्यूचर में लक्ष्मी बनेंगी, ब्रह्मा बाबा नारायण बनेगा। परंतु जरा भी मम्मा को ये अहम नहीं था कि मैं जाकर लक्ष्मी बनूंगी। मम्मा भी अपना पुरुषार्थ चालू रखा, ब्रह्मा बाबा भी अपना तीव्र पुरुषार्थ अंत तक करते रहे, अव्यक्त अशरीरी बनने का और निरंतर योगी बनने का पुरुषार्थ चलता रहा। और उन्होंने ये भी बैलेंस था योगा और सेवा का। सदैव बाबा की याद में रहते थे और कोई भी बाबा के पास जाते थे कुछ न कुछ ज्ञान का मनन मंथन किया हुआ सुनाते थे। और आंगन में भी जाते थे तो भी कुछ न कुछ जिनको भी मिलते थे सेवा करते थे। और उन्होंने अंत में अपनी निरंकारी निराकारी निर्विकारी ये शब्द जो कहे लास्ट मोहल्ले में, अपनी ये स्टेज बनाई थी। तो हम देखेंगे कि उनकी विशेष और क्या क्या उन्होंने संपन्न आत्मा की जो निशानी उन्होंने थी, वो सदैव संतुष्ट रहते थे। और संतुष्टता की निशानी है हर्षित मुख, स्वयं से, परिवार से, ड्रामा से और भगवान से। कई बार क्या है, भक्ति में हमको आदत थी ना भगवान को भी दोष देने के, भगवान मेरा बेटा क्यों ले लिया। कंप्लेन करते थे तो भगवान से भी कई बार कई असंतुष्ट होते हैं। लेकिन जब संपन्न बनते हैं, बाबा कहते हैं, तो कोई कंप्लेन नहीं, संतुष्ट। संतुष्ट माना लोभ नहीं, लालच नहीं, इच्छा नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है। तो न धन वैभव खाने पीने घूमने फिरने की इच्छा न हो, इच्छा मात्र अविद्या के संस्कार यहां से हो, क्योंकि लोभ का सूक्ष्म रूप है इच्छा। अच्छा लगता है, मुझे चाहिए। लवफुल बाबा की बेहद की दृष्टि थी, भाई भाई की दृष्टि थी, निष्पक्ष और निस्वार्थ स्नेह था। कभी जाति नहीं देखी, देश नहीं देखा, गाली देने वाले को गले लगाया और निंदा करने वालों को भी मित्र बनाया प्रैक्टिकल। क्योंकि एक अखबार में आर्टिकल आया कि लेखराज दादा को 400 राणियां हैं, उसको 16108 राणियां चाहिए। अपने को कृष्ण कहलाते हैं और 16108 राणियां चाहिए। तो जगदीश भाई ने बाबा से कहा, बाबा उसको मैं लिखत में जवाब दूं। और उन्होंने कहा, नहीं, उसको चाय पानी के लिए बुलाओ, मित्र बनाओ। और सचमुच यही किया जगदीश भाई ने, मित्र के रूप में बुलाकर चाय पानी पिलाया और सच्ची बात बताई कि ये रानियां नहीं है, ये ब्रह्मा कुमारियां उसकी बेटियां हैं। और बेटी को बाप गले लगाएगा, उसमें क्या बुरी बात है। सो बाबा चारों सब्जेक्ट में पूर्ण थे, नॉलेजफुल, लवफुल, पावरफुल, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, कर्मों की गति जानने वाले, एकरस, अचल, अडोल, सोचना, बोलना, करना उनका श्रीमत अनुसार होता था। पावरफुल मास्टर, सर्वशक्तिमान, योग इतना था। जो विघ्न आए कभी घबराए नहीं। एंटी ओम मंडली ने कितना पिकेटिंग किया, कितना लोगों ने आकर कहा कि बाबा आप अपनी ये शिक्षा नहीं दो पवित्र रहने की। बाबा ने कहा, मैं थोड़ी कहता हूँ, ये तो वो कहता है। एक बारी गवर्नमेंट का आया कोई ऑफिसर, कहे आपने क्यों कहा कि जमीन के लिए हमें पाकिस्तान से लड़ना नहीं चाहिए। तो बाबा ने कहा, मैंने थोड़ी कहा, ये तो ऊपर वाले ने कहा है। तो बाबा कभी घबराए नहीं, विघ्न आए पार किए योग बल से, माया जीत बने, निर्विकारी बने, विकारों का अंश मात्र भी नहीं रहा। दृष्टि पवित्र, कोई भी आकर्षण नहीं, किसी से भी प्रभावित नहीं, नाम रूप का प्यार नहीं, सम्मान में रह के सम्मान सबको देते रहे। मेरापन नहीं। मुरली में भी आप देखते होंगे, ये कहेंगे ये गांव का छोरा था, ऐसे नहीं, मैं ये। किसी में मोह नहीं, और अंत में भी एक बाप की याद में शरीर छोड़ा, नष्ट हुआ। सभी ने बाबा को पूछा, जब बाबा अव्यक्त होके अव्यक्त तन में आए, व्यक्त में आए जब, कि बाबा हमको पहले से क्यों नहीं बताया, छुट्टी क्यों नहीं लिया। बाबा कहते, मैं छुट्टी लेता, आप सब छुट्टी देते क्या? ये तो अचानक एवर रेडी का ही पार्ट था। और सदैव देही अभिमानी, अंतर्मुखी, कोई चिंता नहीं, डर नहीं, हमेशा अपने को सुरक्षित समझते थे। फरिश्ता रूप स्थिति, डबल लाइट, गाइड बन के सबको गाइडेंस किया, उड़ते रहे उड़ाते रहे। सहनशील, आई थिंक एक दो हफ्ते पहले सारी मुरली चलाई थी, बाबा कितना सहनशील रहे, कितना सहन करना पड़ा, ज्ञान के पहले कितना रिस्पेक्ट सब देते थे, ज्ञान के बाद कितना सहन करना पड़ा, परंतु ये कोई उनको सहन करना नहीं समझाया था। हियर नो इवल, कभी आवेश में नहीं आता, जोश नहीं, चिड़चिड़ापन नहीं, ये क्रोध के सूक्ष्म रूप है, वो नहीं थे। और हमेशा उमंग उत्साह रहा, जब उमंग उत्साह है तो आलस्य नहीं हो सकता। अब उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है हम लोगों को, क्योंकि जब बाप समान बनना हो पुरुषार्थ भी तीव्र चाहिए। ऐसे नहीं होता है, चलता है, कौन बना है। कई लोग ऐसे भी कहते हैं, कौन बनाया अभी तक लक्ष्मी नारायण, देखो फलाना 30 साल से ज्ञान में है, गुस्सा आता है, मैं तो नया हूं। तो कई बार लोग हैं एग्जाम्पल देते हैं इधर उधर का, परंतु बाबा कहते हैं सी मदर फादर, भाई बहनों को नहीं देखो, फॉलो मदर फादर। तो इसलिए मम्मा बाबा का जो हमारे आदर्श है उनको देखो, उनकी बायोग्राफी को पढ़ो, उन्होंने जीवन में क्या धारणा की वो देखो और अपना जीवन बनाओ। तो लक्ष्य हमेशा सामने रहे और जैसे दीदी का स्लोगन था, अब घर जाना हो तो घर जाने के लिए एवर रेडी रहना है। और हमारे में दृढ़ता हो, बनना ही है, ऐसे नहीं सोचो अब तो हम नए हैं, हम तो गृहस्थी है, नहीं, मुझे बनना है, बनकर दिखाना है, बहानेबाजी नहीं। बाबा से सर्व संबंध बांधो और बाबा को ही मेरा संसार बनाओ। एक बाबा, दूसरा ना कोई, ये पक्का हूं। संकल्प, बोल, कर्म, समय, संबंध पर ध्यान रखना है, कुछ व्यर्थ न जाए। इकोनॉमी, एक नामी व्यर्थ गया तो समर्थ नहीं बन सकेंगे। मैं और मेरा दोनों को छोड़ना है, नष्ट मोह बनना माना मेरा छोड़ना, और अहम छोड़ना माना मैं पंचोना, मैं धनवान हूँ, मैं स्वरूपवान हूँ, मैं लवली हूँ, मैं स्वीट हूँ, कोई आपको विशेष टाइटल भी दे, मन से स्वीकार नहीं करो, दिल से नहीं स्वीकार करो, क्योंकि ज्ञान में आने से नेचुरली ये गुण आ जाते हैं, जो हमारे आदि अनादि संस्कार है वो आ जाते हैं। तो लोग प्रशंसा करेंगे, परंतु बाबा की ये गिफ्ट है समझ के हमको चलना है, अहंकार ना हो। सहन शक्ति बढ़ाना है तब तक गुस्सा नहीं आएगा। जब स्नेह की शक्ति होगी सहनशीलता ऑटोमेटिक आ जाएंगी। और लक्ष्य, मुझे पूरा वर्षा लेना है, और अब नहीं तो कब नहीं। इसलिए जो कुछ धारण करना है अभी करो, ऐसे नहीं कि बच्चे बड़े हो जाएंगे ना फिर हम सेवा में लगेंगे। गृहस्थी है ना, अमृत वेला कैसे उठ सकेंगे, सोते सोते ही 11-12 बज जाते हैं काम पूरा करते करते, ये नहीं। अपना टाइम टेबल श्रीमत अनुसार रखना है, जो करना है अभी करना है। समस्या आएंगे, ऐसे नहीं समझो बाप का बना सब ठीक हो जाएगा, नहीं, समस्या आएंगे। हमारे कर्मों का हिसाब किताब यहीं चुप्त करना है। इसलिए समस्या आए तो घबराना नहीं है, पढ़ाना, पाठ पढ़ाने आई है, हमको मजबूत बनाने आई है। मम्मा कहते थे हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो, और जब नए नए ज्ञान में आए थे ऑस्ट्रेलिया वाले तो ये बहुत ध्यान रखते थे, स्पेशली ड्राइविंग करते, हो सकता है ड्राइविंग करते करते एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, तो बहुत बाबा के याद में रहना है। तो ये समझने से अलबेलापन नहीं रहेगा। तो यहां हमें स्वराज्य अधिकारी बनना है, तभी विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। तो अपने मन बुद्धि संस्कार कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल हो। हम जानते हैं माया कहां से सबसे पहले आती है, आंखें धोखा देने वाली है, आंखें देखती है, समझते हैं मेरे पास तो ये चीज नहीं है, मेरे पास होनी चाहिए, या ये व्यक्ति तो बहुत खूबसूरत है, जरा उनसे फ्रेंडशिप करूं। तो माया पहले आंख से आती है, या परचिंतन सुनते हैं, जर्म इस जंग में सुनते हैं, तो कान से आती है, खाना अच्छा लगता है तो देखते ही होता है, चलो खाएं। तो इसलिए मन बुद्धि और कर्मेंद्रियों पर हमारा पूरा कंट्रोल हो। अपना चार्ट लिखना है, योग अमृत वेले में कैसा रहा, सारा दिन कौन सा ज्ञान मंथन किया, कौन सी पॉइंट धारण की, कौन सी सेवा की, किसी को दुख तो नहीं दिया, रात को सोने पहले बाबा की याद में सोई, आजकल बाबा कहते हैं, एक तो तीन बिंदु याद रखो, आत्मा परमात्मा फुल स्टॉप, और मन को ऑर्डर करो साकार से आकारी, आकारी से निराकारी। एक सेकंड लगता है क्योंकि अंतिम पेपर एक सेकंड का होगा। उस समय सोचते हैं रहे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, अरे ये हमने ये नहीं किया, ये करना था, ये करना था। नहीं, अंत में एक बात की याद रहे, जैसे है कहा कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा। तो ये एक सेकंड का पेपर होगा, यदि ज्यादा टाइम लग गया फेल। और हमें अपने आप को याद दिलाना है, हमारा आदि अनादि संस्कार श्रेष्ठ संस्कार थे, पवित्रता सुख शांति आनंद हर्षित मुख, ये सब हमारे देवता आदि संस्कार या आत्मा के अनादि संस्कार। तो शूद्र के संस्कार के हमको नहीं कहना कि ये मेरे संस्कार है, मेरी आदत है, मेरा स्वभाव है। नहीं, अभी शूद्र संस्कार मेरा नहीं, मैं शूद्रपने से मर कर ब्राह्मण बन गई हूँ, ये याद रखना है। जब बाप से सर्व संबंध होंगे, बाप से प्यार होगा, बाप से सहारा, एक बल, एक भरोसा होगा, तो लौकिक से न्यारा होना सहज हो जाएगा। और देखना है कि सूक्ष्म भी विकार का अंश ना हो। क्रोध तो छोड़ा, पर चिड़चिड़ापन आ गया, जोश में बोल दिया, या किसी से नफरत कर ली, किसी से आकर्षित हो गए, और देहभान के कारण अपने देह को, चेहरे को आईने में कितने बारी देखते हैं, बाल ठीक है या नहीं, कपड़े ठीक है या नहीं, वजन ठीक है या नहीं। आजकल तो ये भी बहुत है, वजन बढ़ना नहीं चाहिए, उसके लिए डाइटिंग करेंगे और रोज या बीच बीच में मेजरमेंट करेंगे, यहाँ कितना है। और इतने तक के प्लास्टिक सर्जरी भी करते हैं कि हम खूबसूरत दिखाई दें, तो ये ना हो, ये ध्यान रखना है। एक भी कमजोरी ना हो, नहीं तो एक कमजोरी भी क्या करेंगे, अपने मित्र को ले आएंगे सब, एक विकार भी आएगा, सब विकारों को ले जाएगा। सबसे पहला तो है देह अभिमान, और फिर धीरे धीरे काम क्रोध लोभ मोह द्वेष वैर ईर्ष्या सूक्ष्म रूप में भी आए, तो इसलिए बहुत अटेंशन रखना है कि यहाँ हमें माया जीत बनना है। प्रकृति चित बनना है कि कैसी भी वेदर हो, ऐसे नहीं कहो भाई गर्मी में तो मेरा दिल नहीं लगता है या ठंडी तो हमको अच्छी नहीं लगती है या बारिश का मौसम अच्छा नहीं लगता है। नहीं, जो भी है, जहां भी है, जैसे भी है, बाबा जहां भी रखे खुश रहें। तो ऐसा हमारा पुरुषार्थ हो जो हरेक के लिए शुभ भावना और शुभकामना है। अपने को अवतार समझना है, जैसे बाबा अवतरित होते हैं तो बाबा का किसी में मोह नहीं रहता ना। आते हैं, सेवा करते हैं, चले जाते हैं। ऐसे रोज समझो हम फरिश्ते सूक्ष्म वतन से सवेरे अमृत वेला यहाँ आते हैं, पाठ बजाते हैं, रात को फिर सूक्ष्म वतन में चले जाओ। हम विश्व परिवर्तक हैं, विश्व कल्याणकारी है। तो जैसे बाबा का धंधा है पतितों को पावन बनाना, ऐसे हमारा भी धंधा है पतितों को पावन बनाना। और ड्रामा पर अक्षर अडोल रहना है। जो कुछ हो रहा है जामानुसार, पास्ट में जो हुआ अच्छा हुआ, कर्मों का हिसाब किताब पूरा हुआ। प्रेजेंट में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और फ्यूचर में जो होगा बहुत ही अच्छा होगा। तो ड्रामा अनुसार जो हो रहा है इसमें कल्याण है। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं, वैसे, ये प्रश्न ना हो। हमारे कर्मों अनुसार हम सब के संबंध में आते हैं। कोई से अच्छा संबंध है, कोई से बुरा संबंध है, कोई गाली देता है, कोई ईर्ष्या करता है। हमें उनके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। जैसे बाबा ने निंदा करने वालों को भी अपना मित्र बनाया, हमें भी देखना है कि उनके प्रति हम इतनी स्नेह की दृष्टि से देखते हैं। तो जितना हम हरेक के लिए स्नेह रखेंगे, सहयोग देंगे, वो भी हमें सहयोग देंगे। और बैलेंस रखने से, क्योंकि मेजॉरिटी आप घरों में रहते हैं, बैलेंस जरूर रखो। पढ़ाई भी पढ़ो, तो अपनी जो जिम्मेवारी है वो भी संभालो। जिम्मेवारी को बोझ मत समझो, ट्रस्टी बनकर, निमित्त बनकर अपने परिवार को चलाओ। उनको भी बाबा के बच्चे हैं समझकर चलाओ। जैसे आप सेंटर पर बाबा के बच्चे कुछ गड़बड़ करते हैं, आप गुस्सा करते हैं या मार मारते हैं, अपने लौकिक बच्चों को पर भी मारपीट नहीं करनी है, उनके साथ मिठास से प्रेम से बात करो। तो ये भी बैलेंस, स्वीटनेस और स्ट्रिक्टनेस। स्वीट भी रहो, स्ट्रिक्ट भी रहो, क्योंकि आजकल के बच्चों को सिर्फ स्वीटली बात करेंगे, कभी माने कभी ना माने, तो स्ट्रिक्ट भी रहना पड़ता है। क्या है कि विदेश में एक युगल आता था, बच्चे भी साथ में आते थे, छोटे थे तो ठीक थे, सब ठीक चलते रहे, पर बड़े हुए संग दोष में आ गया। तो एक लड़का है, लगभग 13-14 साल का हुआ होगा, रोज घर से जाए और स्कूल के टाइम पर जाए, स्कूल का टाइम पूरा हुआ तब आ जाए, पर स्कूल में जा ही नहीं। और संग दोष में कुछ जुआ खेलता, कुछ ड्रग करता और घर से चोरी भी की। तो जब माँ बाप को पता लगा कि ये तो स्कूल में नहीं जाता है, तो माँ बाप ने स्ट्रिक्ट होकर कहा घर में रहना है, पढ़ाई ठीक पढ़नी है, पढ़ाई ठीक नहीं पढ़नी है तो जाओ अपना संभालो। तो ऐसे नष्ट मोह होकर स्ट्रिक्ट होकर रहे, तब वो लड़का ठीक ठिकाने आया। नहीं तो सोने की चैन घर से चोरी कर ली और अपना कंप्यूटर भी बेच दिया, कहा मैं अपने फ्रेंड को देता हूँ, ऐसे करके बेच दिया। तो क्या है आजकल बच्चे संग दोष में आकर, यहाँ भी हमने सुना है पंजाब के तरफ यंग लोग हैं, ड्रग के अधीन बहुत हो गए हैं। तो नज़रदारी रखनी पड़ती है घर वाले बच्चों के ऊपर, उनको प्यार भी दो तो उनका क्या फ्रेंडशिप है, किसके साथ है, क्या करता है, उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना है, उसको भी समय देना है। क्योंकि जब माँ बाप से प्यार नहीं मिलता तो वो अपने फ्रेंड से प्यार लेके फिर संग दोष में आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि हम संग दोष में उनको आने ना दें और उनको प्यार से भी चलाएं। और प्यार से चलाने से हमने देखा है कि वो माँ बाप के प्यार के कारण थोड़ा भक्ति आदि भी करते हैं। क्योंकि जब मैं लंदन में थी तो वहाँ कैरेबियन का एक युवान था, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, कोर्स करने आया। मैंने पूछा तुम भक्ति करते हो, तो कहता है मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता हूँ। क्यों? कि हिंदू धर्म में माँ बाप है वो ब्राह्मणों को भोजन खिलाने बुलाते हैं और बच्चों को भूखा रखते हैं, जब तक ब्राह्मण न खाए जाए आपको खाना नहीं है, ये कैसा धर्म है। और राम को देखो तो उसके हाथ में तीर कमान है, हरण को मारता है। और क्राइस्ट देखो कितना दयालु है। वो बीमार भेड़ बकरे को कंधे पर ले जाता है तो मुझे क्राइस्ट अच्छा लगता है, राम अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने पूछा कि तुम जब पूजा भक्ति करते हो, हाँ, किसका चित्र सामने रखते हो? शिव का या शंकर का? मैंने कहा अभी अभी तुम कहता है मैं हिंदू धर्म नहीं मानता हूं और शंकर का चित्र रखा है। तो कहता है मैं जब लंदन आता था तो मेरी माँ ने ये चित्र दिया और कहा कि जो रोज स्कूल में जाने के पहले, यूनिवर्सिटी में जाने पहले, उसके सामने अगरबत्ती जलाकर पूजा करना, इसलिए मैं करता। तो जो हिंदू धर्म आज विदेश में भी, करेबियन तक, करेबियन बहुत दूर है, सबसे दूर यहाँ से, और वहाँ पर भी रामायण का पाठ करते हैं और हिंदी नहीं समझते हैं पर बोलते हैं, गाते हैं रामायण का हिंदी में। तो क्या है, माताओं ने हिंदू धर्म चलाया और बच्चे फॉलो करते रहे प्यार के कारण, कि माँ ने कहा है, घर जाऊंगा तो माँ पूछेंगी कि तुम पूजा करते हो चित्र के। तो इसलिए हमने देखा विदेश में भी, अमेरिका में भी, जहाँ भी गई, घरों में कहीं कहा पशुरू में हमने रहना था तो जो जो भी युवान थे बाहर जाने के पहले चित्रों के सामने दीपक जलाना, नमन करना आदि आदि करते रहे। तो ये क्या है कि प्रेम के वश जो माँ बाप कहते हैं वो करते हैं, तो इसलिए प्रेम से भी चलाना है परंतु साथ साथ स्ट्रिक्ट भी रहना है। ओम शांति।